अभिवादन। आज हम भाषा के एक ऐसे पहलू पर गौर कर रहे हैं जो अक्सर स्कूल में सीखा जाता है, पर जिसका असर हमारे रोजमर्रा के संवाद पर काफी गहरा होता है।
हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।
बिल्कुल, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमारे पास स्रोत के तौर पर चैप्टर 10 के कुछ हिस्से हैं जो इस विषय को समझाते हैं। देखिए, बात सिर्फ व्याकरण की नियमों की नहीं है, ये समझने की है कि हम अपनी बात रखते कैसे हैं, किस चीज पर जोर देना चाहते हैं और कभी कभी शायद क्या छिपाना चाहते हैं।
हाँ, ये एंगल दिलचस्प है,
है ना?
हाँ।
जैसा कि स्रोत में भी मजेदार अंदाज में कहा गया है, हम देखेंगे कि वाक्यों को कैसे फ्लिप किया जा सकता है, मतलब उनका नजरिया कैसे बदला जा सकता है।
बिल्कुल।
तो हमारा मकसद है इस चैप्टर 10 के जरिए एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच के फर्क को पकड़ना, ये देखना कि अदला बदली होती कैसे है और पैसिव वॉइस असल में कहां और क्यों इस्तेमाल होता है।
ठीक है,
तो तैयार हैं? चलिए चैप्टर 10 की मदद से इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्याकरण में इस वॉइस का मतलब क्या है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
हाँ, वॉइस शब्द शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे पहली बार में, लेकिन व्याकरण में इसका मतलब काफी सीधा है।
अच्छा।
वॉइस हमें बताता है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, उसका क्रिया यानी एक्शन या वर्ब से क्या रिश्ता है।
ओके, रिश्ता मतलब?
मतलब क्या सब्जेक्ट खुद वो काम कर रहा है या फिर काम उस पर हो रहा है। ये बस ये दिखाने का एक तरीका है कि वाक्य में असली हीरो कौन है, काम करने वाला या जिस पर काम हो रहा है।
अच्छा, तो ये कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया यानी वर्ब के बीच का रिलेशन है।
हाँ जी, बिल्कुल।
और इसके दो मुख्य अंदाज हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इनमें बुनियादी फर्क क्या है?
बिल्कुल, देखिए बुनियादी फर्क है फोकस का, यानी हम किस चीज को अहमियत दे रहे हैं।
फोकस।
एक्टिव वॉइस में स्पॉटलाइट सीधे डूअर पर होती है, मतलब काम करने वाले सब्जेक्ट पर।
अच्छा।
वाक्य का ढांचा भी सीधा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे स्रोत का उदाहरण लें, रिया पेंट्स अ पिक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ सारी तवज्जो रिया पर है क्योंकि वही तो पेंटिंग कर रही है। ये बहुत डायरेक्ट और क्या कहते हैं, दमदार तरीका है बात कहने का,
सीधा और साफ।
हाँ। वहीं दूसरी तरफ पैसिव वॉइस में स्पॉटलाइट घूमकर रिसीवर पर आ जाती है, यानी उस चीज या व्यक्ति पर जिस पर एक्शन हो रहा है।
जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था।
बिल्कुल, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है। ऑब्जेक्ट जो अब नया सब्जेक्ट है, प्लस बी क्रिया का सही रूप, प्लस मुख्य क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल, और अक्सर बाय लगाकर डूअर का जिक्र। जैसे उसी वाक्य का पैसिव क्या होगा, अ पिक्चर इज पेंटेड बाय रिया।
अ पिक्चर इज पेंटेड बाय रिया।
अब देखिए फोकस पिक्चर पे चला गया।
हाँ, यानी एक ही बात को कहने के दो अलग अलग नजरिए, एक में रिया हीरो है, दूसरे में तस्वीर। ये तो कमाल की बात है,
है ना?
कि सिर्फ शब्दों की तर्तीब बदलने से वाक्य का पूरा जोर ही बदल जाता है।
बिल्कुल। और पैसिव वॉइस की एक और खासियत है जो पेज 71 के ग्रामर बाइक में बताई गई है।
क्या?
वो बाय प्लस डूअर वाला हिस्सा, जैसे बाय रिया, वो अक्सर जरूरी नहीं होता।
अच्छा।
हाँ, अगर हमें पता नहीं कि काम किसने किया या ये बताना जरूरी नहीं है, तो उसे आसानी से हटा सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए द विंडो वॉज ब्रोकन,
खिड़की टूट गई।
हाँ, तो फोकस टूटी हुई खिड़की पर है, किसने तोड़ी ये शायद उतना अहम नहीं, या हो सकता है पता ही ना हो।
अच्छा, ये बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यानी पैसिव वॉइस सिर्फ फोकस बदलने का तरीका नहीं है,
नहीं,
बल्कि कभी कभी काम करने वाले को बैकग्राउंड में डालने या गायब करने का भी तरीका है।
हाँ, कह सकते हैं।
ठीक है, अब अगर किसी को एक एक्टिव वाक्य को पैसिव में बदलना हो, वो फ्लिप करना हो, जिसके बारे में शुरू में बात हुई थी, तो उसके लिए क्या कदम उठाने होंगे? चैप्टर 10 में इसके क्या नियम बताए गए?
हाँ, देखिए चैप्टर 10 पेज 72 में इसे बदलने के कुछ साफ नियम दिए गए हैं जो इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। एक एक करके देखते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
रूल 1, सबसे पहला काम है वाक्य के तीन मुख्य हिस्सों को पहचानना, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है।
ओके, SVO, ये तो बेसिक है।
हाँ, ये नींव है। रूल 2, अब आता है फ्लिप का पहला कदम, एक्टिव वाक्य के ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वाक्य के शुरू में ले आइए, ये अब नया सब्जेक्ट बन जाएगा।
ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट।
रूल 3, इसके बाद इस नए सब्जेक्ट और वाक्य के टेंस यानी काल के हिसाब से बी क्रिया का सही रूप लगाना होता है।
बी क्रिया मतलब इज एम आर वॉज वर।
हाँ, इज एम आर वॉज वर बींग बीन। ये टेंस के हिसाब से बदलता है, इस पर अभी बात करेंगे।
ओके।
रूल फॉर्म, फिर जो मुख्य क्रिया थी मेन वर्ब, उसका पास्ट पार्टिसिपल रूप इस्तेमाल करना है,
यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे पेंट का पेंटेड।
बिल्कुल, राइट का रिटन, ईट का ईटन वगैरह।
ठीक है।
रूल 5, आखिर में अगर जरूरत हो या बताना चाहें कि काम किसने किया, तो बाय लगाकर मूल सब्जेक्ट को जोड़ दें जो एक्टिव वाक्य में था। पर जैसा हमने कहा, ये ऑप्शनल है। अगर डूअर अज्ञात है या जाहिर है या महत्वहीन है, तो इसे छोड़ सकते हैं।
अच्छा, चलिए रिया वाले उदाहरण पर इन नियमों को लगाकर देखते हैं। वाक्य है, रिया पेंट्स अ पिक्चर।
ठीक है।
रूल 1, सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिया, वर्ब इज इक्वल टू पेंट्स, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अ पिक्चर। पहचान लिया।
सही। रूल 2, ऑब्जेक्ट अ पिक्चर अब शुरू में आ गया।
रूल 3, वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, नया सब्जेक्ट अ पिक्चर सिंगुलर है, तो बी का रूप लगेगा, इज।
करेक्ट।
रूल 4, पेंट का पास्ट पार्टिसिपल है पेंटेड।
हाँ जी।
रूल 5, बाय लगाकर मूल सब्जेक्ट रिया को जोड़ा, तो बन गया अ पिक्चर इज पेंटेड बाय रिया। वाह, ये तो वाकई एक सिस्टमेटिक तरीका है।
बिल्कुल, ये एक तरह का फॉर्मूला है जिससे वाक्यों का नजरिया बदला जा सकता है। एक बार ये नियम समझ आ जाए तो बदलाव करना आसान हो जाता है।
लेकिन आपने कहा कि बी क्रिया का रूप टेंस के हिसाब से बदलता है।
हाँ।
ये कैसे होता है? मतलब क्या हर टेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है? चैप्टर 10 में इस बारे में क्या जानकारी है?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। टेंस बदलने पर बी क्रिया का रूप और कभी कभी उसके साथ लगने वाली सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब वो भी बदल जाती है। पेज 72 पर एक टेंस वाइज कन्वर्जन चार्ट दिया गया है।
अच्छा, चार्ट है।
हाँ, जो इसे समझने में मदद करता है। कुछ आम टेंसेस के उदाहरण देखते हैं उस चार्ट से।
हाँ, देखते हैं।
जैसे सिंपल प्रेजेंट, ही राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव होगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। यहाँ इज लगा पास्ट पार्टिसिपल के साथ।
ओके, इज रिटन।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज कुकिंग पास्ता, यहाँ काम चल रहा है तो पैसिव में बीइंग आएगा। पास्ता इज बीइंग कुक्ड बाय हर।
इज बीइंग कुक्ड। अच्छा, बीइंग कंटिन्यूटी दिखाता है।
बिल्कुल। सिंपल पास्ट, ही क्लोज द डोर वॉज क्लोज्ड बाय हिम, यहाँ वॉज लगा।
वॉज क्लोज्ड।
पास्ट कंटिन्यूअस, शी वॉज क्लीनिंग द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय हर, फिर से बीइंग पर इस बार वॉज के साथ।
वॉज बीइंग क्लीन्ड। ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव मेड अ केक हैज बीन मेड बाय देम, यहाँ हैज बीन आया।
हैज बीन मेड।
पास्ट परफेक्ट, दे हैड बिल्ट अ फोर्ट हैड बीन बिल्ट बाय देम, यहाँ
हैड बीन बिल्ट।
सिंपल फ्यूचर, ही विल डिलीवर द स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, यहाँ
विल बी डिलीवर्ड।
और फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, यहाँ
विल हैव बीन कंप्लीटेड। वाह, काफी सारे वेरिएशंस हैं टेंस के हिसाब से।
हाँ है, लेकिन एक जरूरी बात जो चार्ट के नीचे नोट में बताई गई है।
क्या?
पेज 72 पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे ही विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस आमतौर पर नहीं बनाया जाता।
अच्छा, क्यों?
शायद इसलिए कि अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हिम, ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है।
हाँ, लग तो रहा है।
पर आम इस्तेमाल में है भी नहीं, तो ज्यादातर मुख्य टेंसेस का पैसिव बनता है पर इसका नहीं।
तो ये जानना जरूरी है कि एक टेंस ऐसा भी है जिसका पैसिव रूप आम नहीं है। अच्छा, टेंसेस के अलावा वाक्यों में मॉडल्स भी होते हैं।
हाँ, कैन, कोड, शुड
होते हैं, जैसे टू रीड, टू हेल्प, टू कम्प्लीट। क्या इनका भी पैसिव वॉइस बनता है? चैप्टर 10 में इनके बारे में कुछ है?
हाँ बिल्कुल, मॉडल्स और इन्फिनिटिव्स वाले वाक्यों का भी पैसिव बनाया जा सकता है और ये भी काफी आम है। पेज 72 पर इसके उदाहरण भी दिए गए हैं।
अच्छा, कैसे?
मॉडल्स के साथ स्ट्रक्चर सीधा है। मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल।
मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल।
यस।
जैसे
एक्टिव, यू शुड डू योर होमवर्क। पैसिव क्या होगा?
योर होमवर्क शुड बी डन।
शुड बी डन,
सिंपल।
हाँ, एक और, ही कैन रिपेयर द कार। The car can be repaired.
Can be repaired.
वी मस्ट फिनिश द रिपोर्ट. द रिपोर्ट मस्ट बी फिनिश्ड.
मस्ट बी फिनिश्ड, ठीक है, ये तो आसान है. और इन्फिनिटिव्स का?
इन्फिनिटिव्स के साथ स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है. अक्सर टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है.
टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल,
हाँ. जैसे एक्टिव, आई वॉन्ट समवन टू रीड द बुक. इसका पैसिव जैसा भाव होगा, आई वॉन्ट द बुक टू बी रेड.
अच्छा, आई वॉन्ट द बुक टू बी रेड.
या फिर देर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. इसका पैसिव जैसा भाव होगा, देर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन.
टू बी डन, ठीक है, समझ गया. तो मॉडल्स और इन्फिनिटिव्स के साथ भी ये फ्लिप मुमकिन है?
बिल्कुल.
अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं. मेरे ख्याल से हमने समझ लिया कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, और उन्हें बदला कैसे जाता है. पर सवाल यह है कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल असल में होता कहाँ है. मतलब क्या यह सिर्फ एक किताबी नियम है, या इसका रोजमर्रा की भाषा या लेखन में कोई खास मकसद है?
नहीं नहीं, ये सिर्फ किताबी नियम बिल्कुल नहीं है. पैसिव वॉइस का बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक इस्तेमाल है, खासकर लिखने में. पेज 73 इसी पर रोशनी डालता है.
कहाँ इस्तेमाल होता है ज्यादातर?
देखिए, पैसिव वॉइस अक्सर इन जगहों पर बहुत काम आता है. पहला, फॉर्मल राइटिंग में. फॉर्मल राइटिंग
जैसे
रिपोर्ट्स, सरकारी दस्तावेज, अकादमिक लेख. यहाँ ये भाषा को ज्यादा ऑब्जेक्टिव, मतलब वस्तुनिष्ठ, और इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत बनाता है.
इम्पर्सनल मतलब
कि कौन कर रहा है उस पर जोर कम होता है. जैसे द डिसीजन वॉज मेड टू प्रोसीड, ज्यादा फॉर्मल लगता है बजाय वी डिसाइडेड टू प्रोसीड के.
अच्छा, हाँ लगता है.
दूसरा, न्यूज रिपोर्टिंग में. खबरों में अक्सर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है.
हाँ, ये तो देखा है.
खासकर जब काम करने वाला डूअर अज्ञात हो या उस पर जोर न देना हो. जैसे 3 suspects वो अरेस्टेड लास्ट नाइट. किसने अरेस्ट किया? जाहिर है पुलिस ने, तो बताने की जरूरत नहीं. या कभी कभी, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, जिम्मेदारी से बचने के लिए भी. जैसे मिस्टेक्स वर मेड.
किसने की ये गोल कर दिया?
हाँ, ये सुना है, मिस्टेक्स वर मेड.
तीसरा,
साइंटिफिक राइटिंग में. वैज्ञानिक लेखों में प्रक्रिया या नतीजों पर फोकस होता है, न कि प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक पर.
हाँ, प्रोसेस इम्पोर्टेंट रहा.
बिल्कुल. इसलिए पैसिव वॉइस बहुत आम है. जैसे द सैम्पल्स वर हीटेड 200 degrees Celsius, या द डेटा वॉज एनालाइज्ड. किसने गर्म किया या किसने एनालाइज किया, ये उतना जरूरी नहीं.
ठीक है, और
चौथा, जब डूअर अज्ञात या महत्वहीन हो. जैसा हमने पहले भी कहा, माय वॉलेट हैज बीन स्टोलन. किसने चुराया पता नहीं.
हाँ.
या द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक. कौन अनाउंस करेगा, ये शायद उतना जरूरी नहीं है बताना.
और कोई?
हाँ, एक और, पांचवा, जब एक्शन पर जोर देना हो. कभी कभी काम करने वाले से ज्यादा काम महत्वपूर्ण होता है. जैसे दिस ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1980. यहाँ पुल का बनना अहम है. बनाने वाले इंजीनियर या कंपनी का नाम शायद मुख्य संदेश नहीं है.
अच्छा.
स्रोत पेज 73 में एक अच्छा उदाहरण है जो इस फॉर्मल यूज को दिखाता है. एक्टिव, द मैनेजर चेक द डेटा. इसमें मैनेजर पर फोकस है.
हाँ.
पैसिव, द डेटा वॉज चेक्ड. अब फोकस डेटा और उस पर हुए काम पर है. ये ज्यादा तटस्थ, न्यूट्रल लगता है. कई बार लेखक जानबूझकर पैसिव वॉइस चुनते हैं ताकि बात ज्यादा आधिकारिक या कम व्यक्तिगत लगे.
तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव वॉइस सिर्फ एक व्याकरणिक विकल्प नहीं है?
नहीं,
बल्कि एक तरह का स्ट्रेटेजिक टूल भी है.
बिल्कुल.
ये लेखक को ये कंट्रोल देता है कि पाठक का ध्यान कहाँ जाए, कर्ता पर, कर्म पर, या क्रिया पर. ये तो वाकई भाषा की शक्ति दिखाता है.
सही कहा.
चलिए, अब तक जो हमने चैप्टर 10 से समझा है उसे संक्षेप में दोहराते हैं एक बार.
हाँ, कर लेते हैं.
हमने देखा कि वॉइस सब्जेक्ट और वर्ब के रिश्ते को दिखाता है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, फोकस उसी पर होता है, जैसे रिया पेंट्स अ पिक्चर. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम होता है, फोकस कर्म, ऑब्जेक्ट या क्रिया, एक्शन पर चला जाता है.
जैसे
अ पिक्चर इज पेंटेड. एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ नियम हैं: ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, टेंस के मुताबिक बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाना, और बाय प्लस डूअर वैकल्पिक रूप से जोड़ना.
बिल्कुल.
हमने देखा कि लगभग सभी टेंसेज में पैसिव बनता है सिवाय फ्यूचर कंटिन्यूअस के.
हाँ.
मॉडल्स और इन्फिनिटिव्स के साथ भी पैसिव संभव है. और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल अक्सर फॉर्मल राइटिंग, न्यूज, साइंटिफिक पेपर्स में होता है, या जब डूअर अज्ञात, महत्वहीन हो, या जब एक्शन पर जोर देना हो.
एकदम सही रिकैप है.
तो ये थी एक्टिव और पैसिव वॉइस पर हमारी आज की चर्चा, चैप्टर 10 के आधार पर. हमने न सिर्फ ये समझा कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं, बल्कि ये भी जानने की कोशिश की कि इस फ्लिप का असली मकसद क्या हो सकता है, खासकर औपचारिक लेखन में।
हाँ, और यहाँ एक बात सोचने वाली है जिस पर शायद चैप्टर 10 सीधे तौर पर जोर ना दे, लेकिन जो इस चर्चा से निकलती है।
बताइए।
अक्सर पैसिव वॉइस को मतलब थोड़ा कमजोर या घुमावदार लेखन शैली माना जाता है ना।
हाँ, कहते हैं लोग।
खासकर जब एक्टिव वॉइस ज्यादा सीधा और स्पष्ट हो सकता है, कहा जाता है बी एक्टिव नॉट पैसिव।
राइट।
लेकिन जैसा हमने देखा, पैसिव वॉइस सिर्फ कमजोरी नहीं है, ये एक चतुर तरीका भी हो सकता है फोकस बदलने का।
एक टूल।
हाँ, तो अगली बार जब कोई रिपोर्ट पढ़े या खबर सुने और उसमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल देखें, तो एक पल रुककर सोचें, लेखक ने ये चुनाव क्यों किया होगा?
अच्छा सवाल है।
क्या वे सिर्फ औपचारिक हो रहे हैं, क्या वे जानबूझकर किसी को बचा रहे हैं, या वे सच में सिर्फ एक्शन या रिजल्ट पर ध्यान दिलाना चाहते हैं? ये सवाल हमें भाषा के सूक्ष्म उपयोग और उसके पीछे छिपे इरादों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
बहुत दिलचस्प विचार, वाकई सोचने वाली बात है। इस गहरी बातचीत के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।